नमस्कार जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रविवार को कहा कि अमेरिका में मतदान के अधिकार समेत मौलिक अधिकारों पर आज भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने अलबामा के सिल्वा में नागरिक अधिकारों के लिए मार्च निकाल रहे लोगों पर हुए हमलों के 59 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। मतदान के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को 1965 में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जिस एडमंड पेट्टस ब्रिज पर पीटा था, वहीं एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैरिस ने कहा, हम ये जानते हैं कि आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब भी हम हर प्रकार की आज़ादी के मूल मतदान के अधिकार समेत उस स्वतंत्रता पर हमला होता देख रहे हैं जिसे बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में और शीघ्र मतदान संबंधी बाधाओं सहित मतदान को प्रतिबंधित करने के प्रयासों की आलोचना की। हैरिस ने कहा, हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं? क्या हम स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने वाले देश में रहना चाहते हैं, या हम अन्याय, नफरत और भय के माहौल वाले देश में रहना चाहते हैं? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया के तहत हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के प्राइमरी चुनाव में निक्की हेली ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 2024 प्रचार मुहिम के दौरान अपनी पहली जीत हासिल की। हेली को रविवार को मिली जीत ने ट्रंप के विजयी रथ को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन इस सप्ताह होने वाले सुपर ट्यूजडे में पूर्व राष्ट्रपति को बड़ी संख्या में डेलीगेट का समर्थन मिलने की संभावना है। सुपर ट्यूजडे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया का वो दिन होता है जब सबसे अधिक राज्यों में प्राइमरी और कॉकस चुनाव होते हैं। अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना में पिछले सप्ताह मिली हार के बावजूद हेली ने कहा था कि वो अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेंगी। डीसी रिपब्लिकन पार्टी के अधिकारियों ने रविवार को हेली को विजेता घोषित किया। इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को इडाहो और मिसौरी में कॉकस में जीत हासिल की थी और मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में सभी का समर्थन प्राप्त किया था। चार अंतरिक्ष यात्री रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए, जहां वो 6 महीने के अपने प्रवास के दौरान 2 नए रॉकेट शिप के आगमन की निगरानी करेंगे। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन रॉकेट ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बराट और जेनेट एप्स तथा रूस के अलेक्जेंडर ग्रेबनिकन को लेकर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को ISS पहुंचेंगे। वो अमेरिका, डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का स्थान लेंगे जो अगस्त से वहां मौजूद है। तेज हवा के कारण इन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में 3 दिन की देरी हुई। ये नए अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने तक रहने के दौरान 2 रॉकेट शिप के आगमन की निगरानी करेंगे। जेनेट एप्स दूसरी अश्वेत महिला हैं जिन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबे मिशन के लिए भेजा गया है। उन्होंने उड़ान भरने से पहले कहा कि वो खासतौर से अश्वेत लड़कियों के लिए आदर्श बनकर गर्व महसूस कर रही हैं और उन्हें ये दिखा रही हैं कि अंतरिक्ष यात्रा उनके लिए भी एक विकल्प है। पेशे से इंजीनियर, एप्स ने 2009 में अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले फोर्ड मोटर कंपनी और CIA के लिए काम किया है। एप्स को 2018 में रूस के एक रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाना था, लेकिन उनके स्थान पर किसी और को भेज दिया गया था और इसकी वजह का कभी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले नए यात्रियों में नौसेना पायलट डोमिनिक तथा रूसी सेना के पूर्व अधिकारी गेब्रेनिकिन भी शामिल हैं। पेशे से डॉक्टर बराट का यह तीसरा अंतरिक्ष मिशन है। वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज यात्री हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए INJANSATTA.com पर नमस्कार।